पल्लवी, ये एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसा बिजनेस साइकिल हाइपोथेसिस कहती है कि जब भी आपकी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक फैलाव होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उसके बाद एक कॉन्टेक्शनरी फेज आता है। जैसे बिजनेस बड़े हो जाते हैं, कुछ अनसस्टेनेबल बिजनेस एंटर कर जाते हैं और उसकी वजह से फिर इकोनॉमी फिर से वापस स्विंग करने लगती है, तो मतलब अप डाउन लगा रहता है। इसलिए अगर देखा जाए तो इस 25 सालों में मतलब जब भी इकोनॉमी एक्सपेंड की है, उसका जो भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है या जो भी सिकुड़ा हुआ है इकोनॉमी में, वो इतना नहीं हुआ है कि मतलब उसे रिसेशन कहा जाए। तो ये अपने आप में मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि है और हमें इसका श्रेय जरूर लेना चाहिए।
जी, ये बताइए विनोद जी कि आपके अनुसार ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि ये वाकई एक काफी बड़ा रिकॉर्ड या मान लीजिए काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।
जी पल्लवी, मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं आपको इसे।
जी बिल्कुल।
मान लीजिए पल्लवी, आपके पास एक कार है जिसे आप 25 सालों से चला रहे हैं और 25 सालों में उसका एक भी बार एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो ये अपने आप में उपलब्धि तो है, लेकिन इसकी उपलब्धि के लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? आप ये मानेंगे कि आप अच्छे ड्राइवर हैं, या आप ये मानेंगे कि आपने बहुत अपनी कार मेंटेन रखी है, या आप ये मानेंगे कि आपकी किस्मत अच्छी थी, या आप कहेंगे कि ये तीनों का मिला जुला असर है?
जी, सब चीजों का मिला जुला असर ही कह सकते हैं।
जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था के साथ भी लगभग यही हुआ है। आप इसे जो है इसे दो तीन तरीकों से देख सकते हैं। पहला तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हमने जो है काफी जो है वो इकोनॉमिक सूझबूझ का परिचय दिया है, और दोनों ही तरफ से, मतलब सरकार ने भी और रिजर्व बैंक ने भी, तो हमने काफी अच्छे इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज किया है, सरकार ने भी रिजर्व बैंक ने भी, तो ये एक मतलब इकोनॉमिक सूझबूझ का नतीजा है। दूसरा यह है कि हमारी किस्मत भी अच्छी थी, हमारी खुशकिस्मती थी कि जिस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में मतलब लगभग हर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है रिसेशन से गुजर रही थी, हम उस समय जो है लकीली कोल और आयरन ओर के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे और उनकी प्राइसेस भी हाई रही उस दौरान, और जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल उस रिसेशन में बाल बाल बच के निकल आए। तो ये किस्मत की बात भी कही जा सकती है। तो ये एक मिली जुली चीज है कि हमने जो है इकोनॉमिक सूझबूझ का परिचय दिया है। किसी भी सरकार ने, चाहे लिबरल हो या लेबर, किसी ने भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ ड्रेस्टिक नहीं किया कि जिससे जो है अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़े। रिजर्व बैंक को काफी पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने पूरा स्वतंत्र कर दिया था, और रिजर्व बैंक ने काफी पहले ही जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसे कहते हैं महंगाई पर रोक लगाना, उसकी एक पॉलिसी फॉलो की, और ऑस्ट्रेलिया ने कई सारे रिफॉर्म भी बहुत मतलब और देशों की तुलना में काफी पहले किए, जैसे कि कंज्यूमर एंड कंपटीशन बोर्ड बनाया, डॉलर को फ्लोट किया, ओपन इकोनॉमी बनाया ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सब पीठ सब थपाने वाली बातें हैं, लेकिन मतलब इन पॉलिसीज के बावजूद भी आप कह नहीं सकते कि मतलब हम बच गए होते रिसेशन से अगर कुछ कुछ फैक्टर्स हमारे फेवर में ना गए होते। जैसे एक सही समय पर इंडिया और चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी, तो उस दौरान जो है कच्चे लोहे और कोयले की बहुत डिमांड हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि हम एक्सपोर्ट करने के लिए सही पोजीशन में थे। तो मिला जुला एक प्रभाव कहेंगे, मतलब अच्छी नीतियों का भी है लेकिन थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया है।
जी, ये बताइए, हालांकि भविष्य के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल होता है हमेशा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चीजें चल रही है कि हम हॉलैंड का रिकॉर्ड जो है तोड़ पाएंगे, जो लगातार 26.5 साल लगभग ये अनइंटरप्टेड ग्रोथ जहां पे देखी गई थी?
देखिए पल्लवी, अगले 1.5 साल में हमारे पास सिर्फ 6 क्वार्टर हैं, और 6 क्वार्टर में 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव ग्रोथ के, हम ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो Until and unless ऐसा कुछ हो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में, जिसे कहते हैं ना कि अननोन अननोन, मतलब ऐसी कोई चीज हो जाए जिसकी हमने उम्मीद ना की हो, तो भले ही हो जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बड़ी संभावना है कि हम हॉलैंड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। अगले 1.5 साल में ऐसी कुछ मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। जैसे आप अगर देखिए ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में, तो अब माइनिंग बूम खत्म हो गया है लगभग, कमोडिटी प्राइसेस काफी नीचे हो गई हैं, लेकिन उसकी जगह पर जो है ऑस्ट्रेलिया में एक तो कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा है, अभी हाउसिंग इंडस्ट्री काफी अच्छी चल रही है। दूसरा यह है कि हमने सर्विसेज के क्षेत्र में काफी मजबूती बना ली है, तो एजुकेशनल एक्सपोर्ट्स और टूरिज्म के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी की उम्मीद है। और तो इससे मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि अगले 1.5 साल में कोई ऐसा बड़ा मेजर चेंज होगा जिससे हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाए, लेकिन मतलब कुछ चीजें हैं जो कि एक संभावना ऐसी बनाती है, जो कि रिस्क फैक्टर है एक तरह से कहा जाए तो। जैसे एक तो सबसे बड़ी बात लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउसिंग इंडस्ट्री की जो इतनी तेज ग्रोथ है, ये एक बुलबुला बना रही है जो फूट करके जो है इकोनॉमी को नीचे ले जाएगा। दूसरा ये है कि जैसा कि फ्रेजर स्कॉट मॉरिसन ने भी एक हफ्ते पहले करीब कहा भी था कि हम लोग वेलफेयर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, और अगर हमारा वेलफेयर का खर्चा ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद हमें जो है अनसस्टेनेबल लेवल तक पब्लिक डेट हो जाए। तो ये दो रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि शायद हम लोग हॉलैंड का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया की काफी कह सकते हैं जबरदस्त, अगर तुलनात्मक स्तर पर देखें तो प्रदर्शन रहा है, लेकिन क्या आपको फिर भी लगता है कि जो पोटेंशियल है ऑस्ट्रेलिया का, वहां तक अभी वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? आपको लगता है कि इससे ज्यादा भी ग्रोथ हो सकती है?
पल्लवी देखिए, जहां तक बात है ना पोटेंशियल की, ये पोटेंशियल हमेशा जो है इकोनॉमिस्ट के बीच में बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इश्यू रहता है। कुछ लोग कहेंगे कि पोटेंशियल ग्रोथ अचीव कर ली है, कुछ लोग कहेंगे पोटेंशियल ग्रोथ नहीं अचीव कर ली है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो इसलिए आती है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा पोटेंशियल क्या है
जी।
तो हम कभी भी जो है इसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि पोटेंशियल क्या है और क्या इससे अच्छा हो सकता था। अब अगर आप स्कूल में पढ़े हैं, आप 90% भी नंबर लाते हैं तो आपके पापा कहते हैं भाई 95 ला सकते थे, तो देर इज ऑलवेज सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो तो हमेशा ही रहेगा कि आप पोटेंशियल से अच्छा कर सकते थे, शायद इससे अच्छी ग्रोथ ऑब्टेन कर लेते। लेकिन एक जो तुलनात्मक दृष्टि पे लोग देखते हैं, एक समझ लीजिए कि कंपैरिजन आप मान के चलिए कि आपके समकक्ष आपके जैसे देशों में क्या हालत हुई है, तो इस हिसाब से अगर आप ओईसीडी लीजिए जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के लिए कंपैरेटिव ग्रुप है, मतलब तो ओईसीडी की तुलना में हमने लगभग पिछले 25 सालों में हमेशा ओईसीडी से अच्छा परफॉर्म किया। अगर ओईसीडी का एवरेज दिया जाए तो हम हमेशा उसके ऊपर रहे हैं
जी।
तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमने अपने पोटेंशियल से काफी नजदीक किया है। ये हो सकता है कि मतलब एक एम्पिरिकल इश्यू है कि भाई पोटेंशियल क्या है और हम क्या और बेहतर कर सकते थे, लेकिन हमारे अपने जैसे देशों की तुलना में हमने अच्छा ही किया है।
अच्छा ये बताइए डॉक्टर मिश्रा कि जो पिछले 25 सालों में हुआ है उससे ऑस्ट्रेलिया क्या सीख सकता है आगे की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें?
देखिए पहली चीज तो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी किया है वो ये है कि कभी भी जो है आपको किसी भी तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म से पीछे नहीं रहना है, जो कि हमारे यहाँ जो है कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि सरकारों ने टाइम टू टाइम ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में वो सारे रिफॉर्म किए जिनकी जरूरत थी। जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किया, डॉलर को फ्लोट किया, यूनिलेटरली इकोनॉमी को खोल दिया दूसरे देशों से ट्रेड करने के लिए। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी भी जो है हमें आर्थिक सुधारों से को रोकना नहीं है, जहां जरूरत होगी हमें अपने आप को सुधारना होगा। दूसरा ये है कि मैंने जो देखा है पिछले 25 सालों में अगर आपने नोटिस किया हो तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी बहुत तब्दील हुई है। मतलब अगर आप इस 90-91 के टाइम को देखिए तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर था, बहुत सारी कारें यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती थी जो देश विदेश में जाती थी। अभी मैन्युफैक्चरिंग श्रिंक होकर के लगभग आपका 3-4% बचा है टोटल इकोनॉमी का, लेकिन इस दौरान जो है हमने अपनी जो है अपनी क्षमता को दूसरे क्षेत्रों में विकसित किया। हम जो है अभी अब फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, टूरिज्म के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए हैं। हमने समय के साथ साथ माइनिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया और माइनिंग सेक्टर काफी बड़ा हो गया। तो हमें जो है 25 सालों में ये देखना है कि हमें किसी एक क्षेत्र में सिमट कर नहीं रहना चाहिए, और जैसे जैसे समय के साथ साथ जिस क्षेत्र में विकास के अवसर हों हमें उनको यूज करना है और उसी हिसाब से अपनी इकोनॉमी को लगातार ट्रांसफॉर्म करते रहना है।
डॉक्टर मिश्रा, वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।